ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी युद्ध और इसके मानवीय पहलुओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में सातवें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक व्यापक शांति की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने खासकर विकासशील देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ संगठित प्रयास किए जाने की भी अपील की। संयुक्त वक्तव्य में पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पर बल दिया गया और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फलस्तीनी हथियारबंद गुट हमास के आतंकी हमले की एक स्वर से निंदा की गई। दोनों नेताओं ने गजा में जानमाल के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत संघर्ष विराम और मानवीय सहायता जारी रखने पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और नवा रायपुर में पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कल रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो गई है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। इससे इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया AI और मेटा ने जोधपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन स्थापित करने की घोषणा की है। दोनों संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ मिलकर कौशल और क्षमता निर्माण के लिए यूव AI भी शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य देश में यांत्रिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है। इस उत्कृष्टता केंद्र से यांत्रिक बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी है। कल कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। पर्चे 29 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। राज्य में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अतिरिक्त सर्वेक्षण कराए जाने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उस क्षेत्र के सर्वेक्षण की मांग की गई थी जिसका सर्वे ASI ने पहले नहीं किया था। दीपावली या छठ पूजा को देखते हुए उत्तर रेलवे आज से 7 नवंबर तक 195 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। ये सेवा मुख्य रूप से नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी। इस वर्ष 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीट उपलब्ध होंगी। अनारक्षित श्रेणी में लगभग 54,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी गई है। इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ आज दोपहर नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंगभवन में सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान 2024 देंगे। ये इंडियन स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स विषय पर बोलेंगे। व्याख्यान का आयोजन प्रसार भारती द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में किया जाता है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव के कारण पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों और ओडिशा में कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल केरल और माहे में भी तेज वर्षा का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को खराब श्रेणी में रखा है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 232 दर्ज किया गया। पुणे में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 232 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड को अब तक 335 रन की बढ़त मिल चुकी है। न्यूजीलैंड ने आज 5 विकेट पर 198 रन से आगे खेलना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 25वें सब जूनियर राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। फाइनल में केरल ए, असम ए, तमिलनाडु और केरल बी टीमें पहुंची हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।